ओम शांति, ओम शांति। कहावत है, मन जीते जगत जीत। ये तो दुनिया में कहावत है, अगर आपने मन को जीत लिया तो जगत को भी जीत सकते हो। लेकिन बाबा इसको करेक्ट करते हैं। बाबा क्या कहते हैं, मन को जीतने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मन में तो सबसे पहले संकल्प आते हैं, फिर वचन होता है, फिर कर्म होते हैं। तो कर्म को तो छोड़ना नहीं है, बोलना भी पड़ता है। मन को जीतना का क्या अर्थ लेते हैं, मन को मारना। और बाबा क्या कहते हैं, मन तो कभी मरता नहीं है, वो तो संकल्प शक्ति है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहीं मन को मारो ये कभी नहीं कहा, यही कहा मन मेरे में रखो। मन मना भव, मन को मेरे में रखो। और मन को कैसे रखो वो बताया। पर अर्जुन को तो यही शिकायत थी, मन तो चंचल है, वो तो स्थिर होता ही नहीं है। तब बाबा उसकी युक्ति बताते हैं, अपने को पहले आत्मा समझो। गीता में भी बताते हैं कि जब अर्जुन ने कहा ये मन तो चंचल घोड़ा है, तो भगवान ने क्या कहा, वैराग्य और अभ्यास, ये दो शब्द गीता में आते हैं, इनसे मन को वश में किया जा सकता है। तो वैराग्य चाहिए, और वैराग्य के लिए क्या कहा, दे के सब संबंधों को भूलो, मुझे याद करो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मन को जीतना नहीं है, माया को जीतना है। और माया माना ही ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसका वर्णन है। गीता में भी बहुत वर्णन है उसका। तो ये कामेशु क्रोधेशु, तो जब बाप आते हैं तो सबसे पहले तो यही कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि बिना पवित्रता के भी योगी बनना मुश्किल है। पवित्रता न हो तो मन एकाग्र भी नहीं होगा। इसीलिए पवित्र बनो और योगी बनो। बाबा ने शुरू से ही ये बच्चों से प्रतिज्ञा कराई। और उसके लिए बाबा राखी का मिसाल देते हैं। पहले भी राखी बांधने जाते थे तो उनको कहते थे ये विकारों को जीतो। तो क्या कहते थे, ये चलो और विकार तो जीत सकते, लेकिन ये काम विकार कैसे जीतेंगे। कई तो समझते ये तो भोजन है, शरीर का भोजन है, इसके बिना जीवन कैसे चलेगा, जिंदा कैसे रहेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये विकार ही है, काम विकार, जिससे दुर्गति को पाया है, कलयुग नरक बन गया है। तो अब इसको जीतो। और उसका कारण है देह अभिमान, इसलिए आत्मा समझो। तो आज बाबा की सारी मुरली पवित्रता पर है। पवित्रता शब्द बाबा ने कितनी बार इस मुरली में कहा है। और बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे अगर पवित्रता अपनाई, पवित्रता की धारणा पूरी है, तो बाबा फिर प्रलोभन देते हैं, बच्चे तुम जगत जीत जरूर बनोगे। बस काम को जीतो, काम विकार को जीतो, जगत जीत बनोगे। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मेरे खातिर ही सही, मेरे खातिर पवित्र बनो। हाँ, भगवान खुद हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे खातिर पवित्र बनो। क्योंकि नई दुनिया में जाने लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। वो पवित्र दुनिया है, वो सारी धारणा यहाँ ही करनी है। तो आज की बाबा की मुरली इसी पर है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 11 फरवरी 2026 है। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो, पैगाम भी यही दो कि बाप का फरमान है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पैगाम सबको दो बाप का, ये भगवान कहते हैं। सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, बाबा रत्नाकर सौदागर है पर कितना सस्ता सौदा आकर के करते हैं। भगवान हमसे लेते क्या है और देते क्या है, है ना, भोलानाथ भी है। तो कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ कि भगवान ऐसा सस्ता सौदा करने आए हैं। कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। उत्तर है, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, पवित्र बनो। बाबा कहते हैं ये सबको बताओ, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है, केवल एक जन्म, वो भी सारा समय तो संगम युग का बीत गया, अभी बाकी थोड़ा सा समय है। कम से कम ये थोड़ा सा समय भी तो पवित्र रहो, यही सौदा करना तुम, ये बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। लोग डरते ना, इसीलिए आते नहीं, ये कहते ये ब्रह्मा कुमारियां कहेगी पवित्र बनो, भाई बहन बनाते हैं तो डरते हैं। तो यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। और हमने देखा है कई है, अगर इनको कोर्स में ये बात नहीं बताते ना, फिर मुरली सुनते हैं तो मुरली में तो ये बात आती है पवित्रता की, तो कोर्स में तो बताई नहीं, सोचते कि पता नहीं बताएंगे तो फिर आएगा ही नहीं, चलो नहीं बताते। लेकिन जब मुरली पॉइंट सुनते हैं तो ये तो बाबा की बात आती है, तो फिर कहते पहले क्यों नहीं बताया, बाबा की मुरली से सुना पर आपने हमको क्यों नहीं बताया, कई ऐसे भी कहते हैं। और कई मुरली सुन करके भी डर जाते हैं कि भाई यहाँ पवित्र बनना है, हम तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। और उस दिन भी बाबा ने कहा ना, कई बाबा को भी राय देते हैं, हाँ बाबा आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बस खाली ये पवित्रता की बात हटा दो, बाकी ज्ञान सब दो, खाली पवित्रता की बात हटा दो तो यहाँ लाखों आ जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, हमको लाखों नहीं चाहिए, हमको तो जो सतयुग के देवी देवताएं होने हैं त्रेता सतयुग के, वो तो अपने आप आएंगे, उनको पवित्रता अच्छी लगेगी। इसीलिए बाबा क्यों इस बात को काटे, इसी पर ही तो सारे झगड़े हुए, अभी तो फिर भी मानने लगे हैं वैसे भी हालात देख करके। तो बाबा कहते हैं यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ, बोलो अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये भीति बाबा कहते हैं सबको दो। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। हाँ, शो करते हैं ना, बहुत लाइटिंग करते हैं, बहुत डेकोरेशन करते हैं ताकि लोग अंदर आए एग्जीबिशन देखने, कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा, बाप से कौन सा वर्षा लेना है, मनुष्य से देवता बनने का। हाँ, कौन सा वर्षा लेना है, मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं, हाँ इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। देवी देवताएं पवित्र रहते इसलिए उनकी महिमा ही ये गाते हैं, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो ये थोड़ी आर्ग्यू करेंगे देवताएं भी तो अपवित्र है, खुद ही गाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे, जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए, है ना, कुछ किया होगा ना, कुछ ऐसी उनको मिली चीज जो वो पवित्र रहे और पवित्र दुनिया के मालिक बने, तो कोई उनको भीती मिली होगी ना, क्योंकि उसके पहले तो कलयुग था। तो कलयुग में उनको क्या प्राप्ति हुई जिसके कारण से वो पवित्र बने और फिर सतयुग आया और वो पवित्र दुनिया के मालिक बने। तो बाबा कहते जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। कौन ये प्राप्ति कराएगा? अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति, इतना बाबा हमें ऊंचा उठाते हैं, ये सब प्राप्ति है ना। तो बाबा कहते हैं जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। और कोई नहीं देगा पवित्र दुनिया का राज्य, केवल बाप ही देता है, वो भी कैसे पवित्र बनाकर। तो बाबा कहते वही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता है, बस एक जन्म लिए पवित्र बनो, वो भी तो कितना समय बीत गया इस जन्म का, बाकी थोड़ा समय। तो सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ। अब शिव बाबा भी कहते जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो, जब तक ये पढ़ाई चल रही है, जब तक ये संगम युग है, तब तक बाबा कहते पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। देखो अभी मुरली भी छोटी थोड़ा ही हुआ है, कितनी बार बाबा ने पवित्र शब्द कहा है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने, तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, सौदा बड़ा सस्ता है, बस थोड़े समय के लिए इस जन्म के लिए, बाकी जो बचा हुआ है उसमें पवित्र बनो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाबा कहते सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो, खाली राय नहीं दो, फरमान है, भगवान ने फरमान किया है हमें कि पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है, ये सब पुरुषोत्तम संगम युग है ही पवित्र बनने का युग। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं, लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिली है। सोचो तो सही, भगवान ने ये वर्षा दिया है दैवी स्वराज्य, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी, दैवी विश्व स्वराज्य, केवल दैवी स्वराज्य नहीं, उस समय और किसी का भी राज्य नहीं था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है, बाप की मत पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। तो ये भी युक्ति बतलाते हैं। अभी क्या है युक्ति जो इस अंतिम जन्म में हम पवित्र बन सकते हैं? तो ये भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ, मुझे याद करो तो वो शक्ति मिलेगी जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। एग्जीबिशंस उस समय बहुत चल रही थी, चारों ओर नए नए चित्र बन रहे थे, तो बाबा कहते उसमें खर्चा तो होता ही है, खर्चा तो करना ही है बच्चों को कल्याण के लिए। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती है, नहीं बिना खर्चा किए राजधानी कैसे स्थापन होगी। सारे विश्व को संदेश देना है तो कुछ उसके लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। तो राजधानी बिगर खर्चे के कैसे स्थापन हो सकती है। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्यालात भी नहीं आता, कर्म में तो नहीं करना है लेकिन मनसा में भी नहीं करना है, वाचा में भी नहीं करना है। क्यों? बाबा कहते तुम देवता बन रहे हो तो देवताओं को तो कभी खराब ख्यालात भी नहीं आता है, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। कभी देवताएं आपस में कुवचन थोड़ी बोलते होंगे, मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वो तो है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उनों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। नशा चढ़ता है ना, भगवान हमको देवी देवता बनाने आए हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो। ऐसे नहीं यहाँ तो विकारी रहेंगे और सतयुग में देवता बन जाएंगे, देवता बनेंगे तब पवित्र होंगे, नहीं अभी बनना है। तो बाबा कहते हैं ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि क्यों बाबा कहते हैं ये सहज होना चाहिए पवित्र बनना, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। बस एक जन्म ही तो खाली बाबा कहते हैं ना, इसलिए बाबा द्वापुर में तो आए नहीं, तब तो और पवित्र बनना ही था, तो बाबा ने उस समय नहीं कहा पवित्र बनो, वो तो एक अलग शाखा ही बन गई सन्यासियों की, जो घर बार छोड़कर पवित्र बनते थे तो सृष्टि को थोड़ा थमाया, लेकिन गृहस्थियों के लिए तो ये था ही नहीं ना? तो इसीलिए तब तो कहा ही नहीं बाबा ने। तो बाबा कहते हैं अभी धारण कर सकते हो क्योंकि ये इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक और पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है तो अमरपुरी की स्थापना होती होगी। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई गई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं कि ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, पांच विकारों का नशा रहता है। यहाँ किसी को बहुत गुस्सा होता है ना, कहते हैं गुस्सा तो चाहिए, लोभ भी चाहिए, काम भी चाहिए, सारे विकार तो चाहिए, तो उनका नशा भी रहता है उनको, तो पांच विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, मास्टर गॉड तो बनेंगे ना, भगवान के बच्चे मास्टर गॉड बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है, मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। पतित लोगों के कर्तव्य कैसे चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा उनकी कैसे होगी, कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। तो कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, पहले तो मन में आएगी ना, मन और बुद्धि में आएगी, फिर मुख से निकलती है, कर्मणा में आने से फिर विकर्म बन जाता है। अभी तो साकार में तो बाबा ने फिर भी कहा कर्मणा में आने से विकर्म बनता, पर अव्यक्त मूल्यों में तो बाबा और भी इस पर जोर देते, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, कर्मणा तो बहुत बड़ी बात हो गई। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है, तो बाप कहते हैं वहाँ सतयुग में कोई विकर्म होता नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं। क्योंकि क्यों विकर्म होते यहाँ, क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, इस जीवन में भी अपवित्र बहुत बने, किसी को बुढ़ापे में ज्ञान मिला तो कहेंगे ना भाई सारी आयु तो अपवित्र ही बने, बच्चे तो पैदा किए होंगे ना बहुत, लेकिन अभी तो कम से कम पवित्र बनो। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है उसके लिए, फिर प्रतिज्ञा करनी है, इतना सहज नहीं होता, प्रतिज्ञा करेंगे तो दृढ़ता आती है, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, केवल पवित्र नहीं मेरे साथ फिर बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाए, तभी तुम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, ऑफर करते हैं, बताते हैं ये मैं दूंगा, बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप ये वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं लक्ष्मी नारायण का, वो है शिव बाबा और ये है ब्रह्मा क्या है दादा, इसलिए हमेशा कहते हैं, कल भी बाबा ने कहा ना परसों बाप दादा, इसलिए कहते हैं बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं, मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, तो प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए है, क्यों प्रदर्शनी मेला करते हैं, इसलिए करते हैं कि प्रदर्शनी मेला करते इसलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो, तो विदेशों में भी करते रहते हैं तो सबका कल्याण हो जाए। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं, राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे, तो बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही कौन, कौन थे जगत जीत, जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते, बाहुबल से कोई भी जगत जीत नहीं बन सकता, दिखाते ना सिकंदर ने सोचा मैं दुनिया का राजा बनूं, हिटलर ने भी सोचा मैं सारी दुनिया पर राज्य करूं, लेकिन बाबा कहते बाहुबल से कोई भी विश्व का राज्य नहीं ले सकता है। आप तो बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है, ये बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए, नहीं तो क्यों बनाए बॉम्ब्स, खत्म करने लिए बनाए हैं बॉम्ब्स, कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी दुनिया, पुरानी से नई दुनिया बनती है, नई दुनिया में है कौन सा राज्य, देवी देवताओं का तो राज्य है, लेकिन बाबा और क्या नाम देते, ईश्वरीय राज्य, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने स्थापन किया है वो राज्य, नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं, राम राम पर राम वो कौन, वो तो त्रेता युग वाले राम को ही याद करते होंगे ना, लेकिन बाबा कहते सच्चा राम कौन है ये तो पता ही नहीं, जिसने राम राज्य स्थापन किया। तो ईश्वर को न जानने कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, शिव बाबा का ही डायरेक्शन है सतो प्रधान बनना है, ये भगवान का डायरेक्शन है। अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा कहते अभी बच्चों को कहा तो है, अब चाहे पुरुषार्थ करो या न करो आपके ऊपर है। बाबा जबरदस्ती तो किसी को नहीं करा सकते ना, तो इसलिए बाबा कहते अब चाहे पुरुषार्थ करो या न करो, चाहे याद में रहो औरों को रास्ता बताओ, चाहे नहीं बताओ, नहीं बताओ, न रहो याद में, आपके ऊपर है। भगवान ने तो बता दिया, अभी आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। तो बाबा कहते हैं तो चाहे तो याद में रहे औरों को रास्ता बताओ, चाहे नहीं बताओ। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। बाबा के पास समाचार तो आता रहता था कि ऐसे प्रदर्शनी की, बाबा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, फिर बाबा हमने ये जवाब दिए, ये सब बाबा को लिखते थे पत्र में। तो प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं, अपना भी कल्याण करना है। हाँ, औरों का तो कर ही रहे हैं, समझाते हैं, लेकिन अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहो, बस यही सौदा करना है, यही करना है भगवान के साथ। सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है। हाँ भाई, सस्ता है क्या? किसको महंगा लगता है क्या ये सौदा? जिसको महंगा लगता है वो हाथ उठाए भाई। विकारों को जीतना, हाँ, कोई किसी को महंगा नहीं लगता, सस्ता सौदा है। जीवन ही पलट जाती, सारा जीवन बदल जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार तो आते हैं, बच्चे राखी बांधने गए तो कहा होगा कि अभी हम चाहते तो आप भगवान को ये विकार का दान दो। फिर वो फॉर्म भराते थे, उसमें लिखते थे कौन सा विकार को जीतेंगे, तो काम विकार पर भी खास ध्यान खिंचवाते थे। तो फिर बाबा कहते राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा कि इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। सीधा ही बोल देते, इस समय इतनी अपवित्र तमो प्रधान दुनिया है, इस दुनिया में अब पवित्र रहना ये असंभव है। उन विचारों को पता ही नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, अभी संगम युग है, दुनिया बदल रही है, ये संगम युग है, ये पता ही नहीं पड़ता। बाप ही पवित्र बनाते हैं, उनों का मददगार। हाँ, इनों का मददगार, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मददगार कौन है? कौन है मददगार हमारा? स्वयं परम पिता परमात्मा है। जैसे पांडवों को ये नशा था ना, हमारा मददगार स्वयं भगवान है, हम जरूर विजयी बनेंगे। तो इनों का मददगार परम पिता परमात्मा है। इनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ भीति बहुत भारी है, क्योंकि प्राप्ति बहुत भारी है। अगर पवित्र बनेंगे तो प्राप्ति बहुत भारी है, ये दुनिया वालों को पता ही नहीं, इसलिए वो क्या समझते, ये तो असंभव है पवित्र रहना। तो बाबा कहते भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। तो बाप कहते हैं इस माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारे जगत पर हम जीत पाएंगे अगर पवित्र बनेंगे, तो क्यों नहीं बनेंगे पवित्र? फर्स्ट क्लास सौदा है, सबसे बढ़िया सौदा है और कितना सस्ता, सब फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीते जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर, सबसे उत्तम पुरुष है कौन है सबसे उत्तम पुरुष, ये लक्ष्मी नारायण। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे, उनको ये मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। तो समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती है, फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है, ऐसे होता है हाँ भूल जाते कि ये पॉइंट हमने समझाई नहीं। वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं, हाँ वो जो कानून है वो उस समय बताना भूल गए, उनको याद ही नहीं था, फिर लड़ते हैं। हाँ तो बाबा कहते हैं, फिर डॉक्टर लोग भी ऐसा ही है करते हैं, डॉक्टर लोगों का भी ऐसा ही होता है। तो ख्याला चलती है, हाँ डॉक्टरों की क्या ख्याला चलती है, इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है, पहले कुछ और दवाई लिख के देते हैं, फिर देखते हैं इससे फायदा नहीं हुआ, फिर कहते नहीं चलो ये दवाई लो, ये दवाई और ठीक है, ये दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर है, कितनी पॉइंट्स बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्य पॉइंट्स समझाता हूँ, परंतु समझने वाले तो सब पतित है, दुनिया में तो सब पतित है, कितना भी अच्छी अच्छी बातें बाबा कहते तुम सुनाते हो पर वो समझते नहीं है, सब पतित है। कहते भी हैं, खुद ही कहते हैं अपने आप को पतित, कैसे कहते हैं खुद ही कहते हैं, हे पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। भाई तुम खुद ही कहते हो हे पतित पावन, आओ पतित पावन सीताराम, वरना पतित हो तो बिगड़ पड़ते हैं। ईश्वर के सामने तो सच कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आता ना आरती में ये सब कुछ आता है, मैं मूर्ख खल कामी पापी, कृपा करो भरता। तो खुद ही कहते हैं कि आओ हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर झूठ कह देते हैं, फिर कहते हैं झूठ, अभी उनको फिर कहो ना कि आपने ही तो कहा कि हम पतित है आकर के पावन बनाओ, तो कहा वो तो आरती बोल दी, पर ये थोड़ी उनकी बुद्धि में आता हमको पावन बनना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, कैसे युक्ति से समझाना है, बाबा ने कौन सा मिसाल दिया है जो युक्ति से आप समझाओ, उसके लिए क्या कहावत है, क्या कहावत है कि सर्प भी मरे और लाठी भी न टूटे, आपका जो सपोर्ट है वो न टूटे पर वो सांप मर जाए, वो व्यक्ति समझ जाए, पर आपसे उनका जो संबंध है वो भी और ही मधुर हो जाए और वो समझ भी जाए मान भी जाए। तो सर्प भी मरे पर लाठी भी न टूटे। तो बाप कहते हैं दूसरा मिसाल बाबा कौन सा देते हैं, एक सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे, युक्ति से समझाना है ताकि उसको बुरा भी न लगे, है ना, नहीं तो बुरा लगता है ना लोगों को। और दूसरा मिसाल बाबा कौन सा देते हैं, चूहे से भी गुण उठाओ, चूहा क्या करता है फूंक मारता है, पहले ऐसे नहीं पहले ही काटता है, पहले फूंक मारता है, जैसे इंजेक्शन लगानी होती है तो नर्स क्या करती है, पहले स्पिरिट लगाती है, स्पिरिट लगाती है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, वो चमड़ी ठंडी हो जाती है, फिर इंजेक्शन लगाती है तो इतना दर्द नहीं होता है। तो चूहा क्या करता है, वो भी इंजेक्शन ही मारता है ना जैसे, लेकिन पहले फूंक मारता है। तो बाबा कहते हैं बाप कहते हैं चूहे से भी गुण उठाओ, चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। एक भाई आया था, उसने अपना मिसाल दिया ये, तो वो क्या सोया था, बाहर ही सोया था, खटिया तो थी नहीं परंतु ऐसे सोया था, और चूहा आया तो चद्दर तो डाली थी अपने पर, लेकिन पैर उनके बाहर थे चद्दर के, तो चूहा आया और रात को काट के गया, उसको पता ही नहीं चला, और सवेरे उठ करके देखता खून ही खून, खून ही खून, ये खून कहाँ से आया, तो पता चला कि उसकी जो पैर की ये उंगलियां थी वो सब कटी हुई थी, हाँ चूहे ने काटी, उसको पता ही नहीं चला, वो दिखाया उसने। तो बाबा कहते हैं चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए, योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है, बाबा की मदद मिलती है, वो पॉइंट्स टच होती है अगर योग में है तो। हो सकता है, अब और उनसे ऊंची बात, हो सकता है कि सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो इसलिए सुनने वाला इतना योगी नहीं है, जो सुनाता है वो इतना योगी नहीं है, पर जो सुनता है उसका पाठ और ऊंचा हो। तो हो सकता है कि इतना न भी अच्छा सुनाया लेकिन वो उस बात को इतना अच्छी तरह से समझ जाता है और उसका पाठ शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे में फिर मैं प्रवेश करके उनकी उनके द्वारा मैं समझाता हूँ, तो वो बाबा ने समझाया तब उसकी बुद्धि में बैठा, वो खुद को तो समझ में इतना था नहीं, तो कई तो अभिमान दिखाते हैं मैंने इनको समझाया ना इसीलिए इसने ये अच्छा समझा। तो बाबा कहते कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने समझाया, तो इसलिए बाबा कहते हैं हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाबा का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसे समझना ऐसे समझाना है जो वो समझे कि पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है, ऐसे युक्ति से समझाओ पवित्रता की बात ताकि उसको महसूस हो कि पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, तो भगवानों वाच है इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, तो हम गारंटी करते हैं, भगवान गारंटी करता है, मनुष्य भी गारंटी करते हैं ना कई चीजों के लिए, गारंटी वारंटी क्या क्या कहते हैं, तो भगवान गारंटी करता है तुम पवित्र इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो, गारंटी है भगवान की। तो ये तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं, सर्विस का जिनको शौक होगा वो तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं, भागना पड़े क्योंकि समझाना है तो फिर जाना पड़े एग्जीबिशंस में, जहाँ एग्जीबिशन होती है, यहाँ भी भाई बहने अभी तो ये ओम शांति भवन बंद है लेकिन बहुत पार्टियाँ आती थी, म्यूजियम में भी कितनी पार्टियाँ आती है, ज्ञान सरोवर में भी बहुत आते हैं, अपना आर्ट गैलरी है वहाँ, बहुत अच्छी तरह समझते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं वो तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं जिनको समझाने का शौक है, भागना पड़े उसके लिए, बाप तो है ज्ञान का सागर, वो कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं, प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं, टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कौन कैसे समझाते हैं, पहले ये करते थे, हाँ बाबा कहते थे तो जो मुख्य बड़ी टीचर है उनको देखना चाहिए, घूमना चाहिए ये कैसे दूसरों को समझा रहे हैं। तो बाबा कहते कौन कैसे समझाते हैं ये टीचर्स को जांच करनी चाहिए। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है, योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सीढ़ी में है ना, हाँ, लिफ्ट मिल जाती है, फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर आदि देव आदि देवी, नीचे आदि देव आदि देवी है, फिर ऊपर लिफ्ट पर चढ़े और लक्ष्मी नारायण बने। चतुर्भुज में भी लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं, दो भुजाएं लक्ष्मी की दो नारायण की, ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की चार भुजाएं हैं, इसका मतलब ये है कि वो युगल है। महालक्ष्मी को चार भुजाएं दिखाते, विष्णु को चार भुजाएं दिखाते, और अगर ऐसे लक्ष्मी नारायण अलग अलग है तो उनको दो दो भुजाएं देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो युगल है। विष्णु है ही चतुर्भुज, तो प्रदर्शनी में रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है, हाँ रथ भी दिखाया, गीता का भगवान भी है। अभी नीचे जो शांतिवन में भी ब्रिजमोहन भाई के नाम से बहुत सुंदर जो मकान बना है, वहाँ पर गीता की पूरी प्रदर्शनी लगाएंगे ताकि लोग आकर के समझे गीता पर, क्योंकि बाबा ने ब्रिजमोहन भाई को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि ये सब साधु संत महात्मा को भी ये समझाओ कैसे गीता का भगवान शिव है। तो बहुत उसने तो बहुत कुछ किया ब्रिजमोहन भाई ने, तो इसलिए वो बिल्डिंग पर खास गीता ज्ञान के ऊपर ही वो बिल्डिंग का भी नाम है प्रेरणा भवन। कहते हैं रथ को भी दिखाया है, फिर कहते हैं कि अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था, सारथी उनका श्री कृष्ण था, और अर्जुन को कहा तुम युद्ध करो, तुम ये तीर कमान चलाओ, मैं तुम्हारा रथ खींचूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बाबा कहते हैं अर्जुन बैठा था तो कृष्ण रथ चलाने वाला था। अब ये सब तो एक कथाएं, अभी ये है वास्तव में ज्ञान की बातें, दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। जब सागर मंथन हुआ तो लक्ष्मी भी निकली, कलश भी निकला, अमृत भी निकला, तो वो बाबा कहते हैं लक्ष्मी के सिर पर रखा। वास्तव में कलश लक्ष्मी के सिर पर नहीं रखा, किसके सिर पर रखा शिव बाबा ने कलश अमृत का, जगत अम्बा पर रखा, क्योंकि जगत अम्बा ही यह अमृत पिलाती है, लक्ष्मी थोड़ी ज्ञान अमृत पिलाती है, वो तो ज्ञान अमृत पी करके वो बनी, पिला करके वो बनी, तो इसीलिए ज्ञान अमृत कौन पिलाता है, जगत अम्बा। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। तो ये भी समझाना पड़े, सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं, एक मत के मनुष्य होते हैं, देवताओं की है ही एक मत, देवताओं को ही श्री कहा जाता है, और किसको नहीं कहेंगे श्री, देवताओं को ही श्री कहते हैं। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो, इस अंतिम जन्म में पांच विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे, ऐसे अक्षर लिखना चाहिए, ये तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में भी कोई सब्ज परी कोई पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले, भगवान को मदद करने वाले वो परियां दिखाते हैं। जवाहरात में भी किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए नौ रत्न दिखलाए हुए हैं। ये तो जरूर है कि जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो पद भी ऊंचा पाएंगे, नंबर वार तो है ना, तो पुरुषार्थ करने का टाइम भी यही है, और आगे के क्या पुरुषार्थ करेंगे समय यही है। ये तो बच्चे समझते हैं, हम बाप की माला के दाने बनते हैं, जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी लगाएंगे। कैसे दौड़ी लगाएंगे? शिव बाबा की याद को जितना याद करेंगे उतना जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी लगाते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है। क्या है ये पढ़ाई? पवित्र रहना है और दैवी गुण धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालना चाहिए। पत्थर फेंकने वाले ना, पत्थर फेंकते वाले वो पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन मुख से जो पत्थर निकालते ना, किसी को दुख पहुंचाते हैं मुख से ही, शब्दों से। तो बाबा कहते पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। ये श्राप नहीं देते हैं बाबा, ये वास्तविकता बताते हैं कि पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रत्न निकालने वाले क्या बनेंगे? रत्न निकालने वाले ऊंच पद पाएंगे, वो रत्नों से खेलेंगे, और पत्थर निकालने वाले पत्थर बुद्धि बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासुओं को समझाओ पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहें या भार कहें। हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुग की अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। कितनी लंबी सेंटेंस हो गई। बाबा कहते ये लिखो, पद पा सकते हो 5000 वर्ष पहले मिसल। परंतु क्यों? परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। परंतु साथ में ये भी लिखो, परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले। तो बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे। साथ तो ले ही जाएंगे, संस्कार तो साथ ले जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा। आगे चल, पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। अभी घुटका आता है ना कोई विकार के वश हो जाते हैं। आगे जैसे देखेंगे और कितना नाजुक समय आ रहा है, तो बाबा कहते घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर के थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का वर्षा सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। पुरुषार्थ चलता है तो पता चलता है ना, तो बाबा कहते तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो, अब क्या जानते, करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जिनको अभी अपनी करोड़ों का पद्मों का अभिमान है ना, बाबा कहते हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत ही धारणा युक्त बाबा ने दो सार बताए हैं। पहला, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। ये ध्यान देना है, मुख से ऐसा कोई शब्द न निकले जिससे किसी को दुख पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। दूसरा, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको बतानी है। किसने गिनती किया कितनी बार पवित्रता शब्द आया? तो सबको सुनानी है पवित्र बनने की युक्ति। वरदान, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी कब रह सकेंगे? जब एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होंगे। जो एवर रेडी है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। उनको और कोई चिंता नहीं होगी, वो सदा खुश होंगे क्योंकि एवर रेडी है बाबा जब भी बुलाए। तो एवर हैप्पी होगा उनका प्रैक्टिकल स्वरूप जो एवर रेडी है। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया, कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया पेपर आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए। किस किस रूप में पेपर आते हैं? परिस्थिति द्वारा पेपर आया, प्राकृतिक आपदा द्वारा पेपर आया, या शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, तो इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। कौन किसको कहेंगे एवर रेडी? कोई भी परिस्थिति आए उसमें हम डावाडोल न हो, हम उसमें फुल पास हो। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, समय किसी के लिए नहीं रुकता, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए तब एवर हैप्पी रह सकते हैं। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। किसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान? जो समय पर वो शक्ति को लगाए, बाद में याद आए वो शक्ति, उसको नहीं कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके लिए क्या करना है? एकता के दो आधार है। कैसे आती है एकता? एक फेथ, विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज है एकता के लिए। और दूसरा प्यार, लव। एकता के लिए विश्वास और प्यार, ये दो चीजें चाहिए। कभी भी एक दो में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा, दूसरे ने माना, यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो, इसके लिए क्या करना होगा? जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो, इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। यही है बाबा कहते हैं एकता और विश्वास के लिए विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनने का रास्ता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। क्या है?
चलो
अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। ऑल डबल फॉरेनर्स विल रिमेन सीटेड आफ्टर मेडिटेशन एंड अनाउंस टुडेज़ प्रोग्राम।